बहनों से निवेदन करती हूँ, कुमारी हर्तिका और बहन कृताली जी।
सतगुरु हो सतगुरु हो महाराज, सुर नर मुनि जन पीर आलिया, कोई न पावे पारा साहब कबीर सर्व रंग रंगिया, सब रंग से सतगुरु हो महाराज, सतगुरु हो महाराज। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, ईश्वर तेरो नाम सबको सन्न सबको संगति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी दोनों प्यारी बहनों का। आप दिल्ली से पधारे थे और आपने अपनी बहुत ही शॉर्ट में अपने आवाज़ को और अपनी भावनाओं को हमारे सामने प्रकट किया। अब हमारे सामने सतीश भाई जी आदर हमारे आदरणीय सूरज भाई जी आने के है ना, तो तब तक हमारे साथ हमारे आदरणीय सतीश भाई जी जिन्हें हम सभी जानते हैं, आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं, आप बाबा के बहुत ही अच्छे अनन्य रतन हैं और आपने 6000 से अधिक गीतों को अपने लेखनी से लिखा है। हम करतल ध्वनि से जोरदार हमारे आदरणीय सूरज भाई जी का स्वागत करेंगे। हमारे मध्य हमारे आदरणीय सूरज भाई जी पधार चुके हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे। हमारे बीच भाई जी को सुनने के पहले हमारे आदरणीय सतीश भाई जी जिन्हें आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, आप आर्ट एंड कल्चर विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं और आप बहुत अच्छे कवि भी हैं, बहुत सारी कविताएं आपने लिखी हैं और जो गीत यहाँ पर बाबा के आप सुनते थे, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, आदि आदि बहुत ही सुंदर गीतों को आपके आशा भोसले जी ने आदि आवाज दी है, नामी ग्रामी बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायकों ने आपके गीतों को गाया है। ऐसे आप बाबा के बच्चे अनन्य रतन हैं। आप मधुबन में लगभग 45 वर्ष से यज्ञ सेवाएं देते हैं और यज्ञ सेवा में से योगी होते होते आप इतने कल्चर विंग को भी बहुत अच्छे से सहयोगी बनकर संभालते हैं। बहुत बहुत सुंदर कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे आदरणीय प्रेता सतीश भाई जी।
ओम शांति। हम सब पद्मा पद्म भाग्यवान हैं। हमारे बीच में आदरणीय सूरज भाई जी हैं। सूरज भाई का परिचय तो बहने औपचारिक देंगी ही देंगी, लेकिन अनौपचारिक परिचय यह है कि सूरज भाई जी हम जैसे तमाम युवाओं को, तमाम भाई बहनों को समर्पित कराने के निमित्त बने और प्रेरणा दिए, जीवन बनाने के निमित्त बने। जैसे एक शिल्पकार बड़े अपने शिल्प कला से कोई मूर्ति करता है, बहुत अच्छा बना देता है, तो इस मंदिर में ऐसे ऐसे मूर्तियों को बनाने के निमित्त बने। एक बार मेरी ओर से सूरज भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर लें। और खुशी की बात यह है कि आज हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, जीवन को पलटाने वाली जीवन कहानी, विश्व नव निर्माता ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, या यूं कहें हम सबके परमादरणीय, हम सबके प्राण कहिए, दैवी कुल के प्राण शिव बाबा के शान, ऐसे ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनाएंगे। मेरा मन कहा कि मैं भी कुछ, एक कविता है आज शाम को सुनाऊंगा आपके बीच में, लेकिन मैं कह रहा था पहले रिहर्सल कर लूं यहां से ताकि कुछ याद हो जाए, तो एक बार मेरे लिए भी जोरदार ताली बजा दें। अधिक समय न लेते हुए, हो सकता है बीच में कुछ त्रुटि हो जाए, क्षमा कीजिएगा। सुनो कहानी कहानी, सुनो कहानी कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी ब्रह्मा बाबा आदि पुरुष महान की, दैवी कुल के प्राण की, शिव बाबा के शान की। सुनो कहानी ब्रह्मा बाबा आदि पुरुष महान की, दैवी कुल के प्राण की, शिव बाबा के शान की। ओम शांति बोलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कलयुग की काली रातों में घोर काली माँ छाई थी, कलयुग की काली रातों में घोर काली माँ छाई थी, काम क्रोध की ज्वाला ने सारी दुनिया झुलसाई थी, काम क्रोध की ज्वाला ने सारी दुनिया झुलसाई थी, झूठ लूट अत्याचारों की बाजारें गरमाई थी, झूठ लूट अत्याचारों की बाजारें गरमाई थी, अबलाओं पर नर पिशाच ने क्या क्या जुल्में ढाई थी, अबलाओं पर नर पिशाच ने क्या क्या जुल्में ढाई थी, ऐसे में फिर पड़ी जरूरत, ऐसे में फिर पड़ी जरूरत आने को भगवान की, दैवी कुल के प्राण की, शिव बाबा के शान की। ओम शांति बोलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। निराकार शिव ने आकर दादा के तन में प्रवेश किया, निराकार शिव ने आकर दादा के तन में प्रवेश किया, दुनिया नई बनानी तुमको ऐसा एक आदेश दिया, दुनिया नई बनानी तुमको ऐसा एक आदेश दिया। ओम शांति के महामंत्र से नवयुग का संदेश दिया, ओम शांति के महामंत्र से नवयुग का संदेश दिया, दादा ने भी पल भर में हीरों का काम समेट लिया, दादा ने भी पल भर में हीरों का काम समेट लिया, चला मुसाफिर तान किसी ना, चला मुसाफिर तान किसी ना, फिकर न की तूफान की, दैवी कुल के प्राण की, शिव बाबा के शान की, ओम शांति। बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पिताश्री के मुख से गूंजा पावनता का नारा था, पिताश्री के मुख से गूंजा पावनता का नारा था, पिताश्री के मुख से गूंजा पावनता का नारा था। घर घर जैसे आग लगी थी, हिला सिंधु ज्यों सारा था, घर घर जैसे आग लगी थी, हिला सिंधु ज्यों सारा था। ओम मंडली जन जन ने उच्चारा था, ओम मंडली जन जन ने उच्चारा था। चली शक्तियां मर्दानी तब महाकाल भी हारा था, चली शक्तियां मर्दानी तब महाकाल भी गारा था। कोर्ट में गई माँ करने रक्षा धर्म के आन की, गई कोर्ट में रक्षा करने माँ धर्म के आन की, दैवी कुल के प्राण की, शिव बाबा के शान की, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रचे गए षड्यंत्र हजारों, बाल न बांका कर पाए, रचे गए षड्यंत्र हजारों, बाल न बांका कर पाए। जाको राखे साइया उसे मार कोई कैसे पाए, जाको राखे साइया उसे मार कोई कैसे पाए। रचे गए षड्यंत्र हजारों, बाल न बांका कर पाए, रचे गए षड्यंत्र हजारों, बाल न बांका कर पाए। जाको राखे साइया उसे मार कोई कैसे पाए, जाको राखे साइया उसे मार कोई कैसे पाए। हुए पिकेटिंग हंगामे पर पीछे पाँव नहीं आए, हुए पिकेटिंग हंगामे पर पीछे पाँव नहीं आए। शिव बाबा तो गुप्त रहे, ब्रह्मा बाबा गाली खाए, शिव बाबा तो गुप्त रहे, ब्रह्मा बाबा गाली खाए। रचे गए षड्यंत्र हजारों, बाल न बांका कर पाए, रचे गए षड्यंत्र हजारों, बाल न बांका कर पाए। जाको राखे साइया उसे मार कोई कैसे पाए, जाको राखे साइया उसे मार कोई कैसे पाए। बहनों ने भी सेवा में बाजी लगा दी जान की, बहनों ने भी सेवा में बाजी लगा दी जान की, दैवी कुल के प्राण की, शिव बाबा के शान की, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आखिर विजय हुई सत्य की, जुल्मों ने मुंह की खाई, आखिर विजय हुई सत्य की, जुल्मों ने मुंह की खाई। बचा लिए बिल्ली के बच्चे, आंच नहीं आने पाई, बचा लिए बिल्ली के बच्चे, आंच नहीं आने पाई। रुद्र यज्ञ ने खोर तपस्या से बेहद वृद्धि पाई, रुद्र यज्ञ ने घोर तपस्या से बेहद वृद्धि पाई। ब्रह्मा कुमारियों के तप से यज्ञ ने वृद्धि पाई, ब्रह्मा कुमारियों के तप से यज्ञ ने वृद्धि पाई। रुद्र ज्ञान यज्ञ के सृजन की गाथा है बलिदान की, स्वर्ग सृजन के पीछे गाथा ब्रह्मा के बलिदान की, दैवी कुल के प्राण की, शिव बाबा के शान की, ओम शांति। बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पिता श्री की बलिहारी ऐसा अब रंग लाएगा, पिता श्री की बलिहारी ऐसा अब रंग लाएगा, भागीरथ का भागीरथ तब वो रंग लाएगा, भागीरथ का भागीरथ पुरुषार्थ वो रंग लाएगा, ब्रह्मा कुमारियों के तप से स्वर्ग धरा पर आएगा, ब्रह्मा कुमारियों के तप से स्वर्ग धरा पर आएगा, मेरा बाबा आ गया जन जन का मन गाएगा, मेरा बाबा आ गया जन जन का मन गाएगा, गूंज रही है गगन में गाथा बाबा के एहसान की, गूंज रही है गगन में गाथा बाबा के एहसान की, दैवी कुल के प्राण की शिव बाबा के शान की, ओम शांति बोलो ओम शांति गाइए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैंने आधा समय तो ले लिया भाई जी का, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये कहानी ही ऐसी है कि ना गा के पूरी हो सकती है ना सुना के पूरी हो सकती है, इसको सुनते रहें और चलते रहें अखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति। आदरणीय सूर्य भाई जी, जैसे आपका नाम है वैसे आप में हर गुण और हर विशेषताएं हैं, जो ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा को विशेष रीति से इस दुनिया में प्रकट करने के लिए, उनके परिचय को और उनके साथ योगाभ्यास कराने के लिए आप विशेष प्रख्यात हैं। आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी, आप मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही 1964 में इस विद्यालय से जुड़े। आपने 1968 में ब्रह्मा कुमारी संस्था में अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया है और आप ज्ञान सरोवर में ही अपनी सेवाएं देते हैं, और विशेष रीति से आप सभी जो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, ब्रह्मा भोजन सभी को पसंद है? पसंद है? हम सब जो ब्रह्मा भोजन करते हैं तो आदरणीय भ्राता जी, ज्ञान सरोवर, शांतिवन और अन्य पांडव भवन आदि, ये सभी ब्रह्मा कुमारीज के हमारे हेडक्वार्टर के जो स्थान है, उन सभी स्थानों का भोलेनाथ ईश्वर बाबा का भंडारा की विशेष सेवाएं आप संभालते हैं, और आपसे तो मैं नहीं समझूंगी कि कोई आपको न जानते हो। अगर आपने ब्रह्मा कुमारीज का पीस ऑफ माइंड चैनल देखा हो तो समाधान प्रोग्राम आपका रहता है, हर दिन समाधान प्रोग्राम में आप अनेक लोगों को ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से केवल मात्र जुड़ाते नहीं लेकिन अनेकों की समस्याओं का समाधान कराते हैं। रूह रिहान में अवेकनिंग टीवी पर भी आप जिन्हें देखते हैं, ऐसे आदरणीय सूरज भाई जी हमारे देश विदेशों में अनेक सेवाएं अपनी देते आए, और अनेक स्थानों से आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त हो चुके हैं। उनमें से एक है चाणक्य अवार्ड से विशेष रीति से आपको नवाजा गया, तो ऐसे आदरणीय हमारे भाई जी के लिए हम सब जोरदार एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे, और हम उनसे सुनेंगे संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में। आदरणीय भाई जी से
ओम शांति। ओम शांति। अच्छा लग रहा है यहाँ आके। वैसे तो सतीश भाई ने गीत में वो सब कह दिया जो मुझे कहना है। बहुत अच्छे कवि हैं सतीश भाई। हम लोग, छोटी सी कहानी सुना दूं पहले अपनी। हम लोग पांडव भवन ही था तब हमारा, उधर आपने देखा होगा या देखेंगे कल हेड ऑफिस। तो हम लोग कल्चरल प्रोग्राम किया करते थे, मैं ही ऑर्गेनाइज करता था और 10-11 साल हम लोगों ने वो किया। उसके बाद हमारा किचन का कार्य बहुत बढ़ गया। सतीश भाई आए समर्पित होने, किचन में ही आए, मुझे गीत और कविताएं और डायलॉग और कवालियां बनाने पड़ते थे। काम ज़्यादा हो गया। ऑर्डर ऐसा मिलता था शाम को 6 बजे कि रात को 9 बजे प्रोग्राम करना है, उसी में लिखना भी, तैयार भी कराना लोगों को और सब कुछ। तो भारी लगने लगा थोड़ा। तो सतीश भाई आए, एक भाई और थे, मैंने देखा ये लोग अच्छा गाते हैं, कवित्व भी इनके अंदर है। तो मैं 2 साल में धीरे धीरे अलग हो गया, इनको सौंप दिया। तो मैं इनको थैंक्स दिया करता था कि तुम आए तो हम मुक्त हुए। मुक्त माना काम बढ़ गया था, मुझे और बहुत सारे काम थे। तो आज हम आपके सामने यही जो कुछ सुना इसको एक लय में सुना देते हैं, क्या क्या हुआ और कुछ बाबा के जीवन की महानताएं भी। मैं केवल ये नहीं सोचता कि किसी महापुरुष की केवल कहानी सुना दी जाए, लेकिन ऐसी सुनाएंगे हम आपको कि उनसे हम कुछ सीखें। हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो अपने जीवन काल में, मैं पहले उनकी 33 इयर्स की कहानी सुना रहा हूँ, जब से उन्होंने ये महान यज्ञ, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापित किया था, वो महान तपस्वी बन गए थे। जो फिलॉसफी होती है वो केवल कहने सुनने सुनाने तक नहीं, वो सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में समा दिया था। महान तपस्वी, जैसा आपने गीत में सुना, भगवान को इस संसार में आने की आवश्यकता हुई, धर्म की ग्लानी हो गई, अब तो बहुत ज्यादा हो गई है। तो भगवान ने उनको चुना कि उनके तन का आधार लेकर वे अपना दिव्य कार्य करें। सुना सभी ने, ऐसा नहीं मैं बोलूं और आपके ऊपर से जा रहा हो। भगवान ने उनको चुना ताकि उनको माध्यम बना के उनके तन में प्रवेश करके वो अपना महान कार्य कर सकें, करा सकें। उसमें भगवान क्योंकि निराकार है, उसको अपना शरीर नहीं होता। आपने शायद आज सुन लिया हो उनका परिचय सवेरे, तो उनको शरीर की आवश्यकता पड़ती है। और आपको एक सीक्रेट मालूम रहे कि भगवान किसी के भी तन में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ऑल माइटी पावर जब इधर आके बैठेगी, ब्रेन है यहां, तो बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड जब किसी के तन में बैठेगी तो बहुत पावरफुल ब्रेन चाहिए, साधारण नहीं। आपने देखा हो कहीं छोटी मोटी जगह, गांव में, कहीं शहरों में भी कोई आत्माएं किसी के तन में आ जाती हैं, उन्हें लोग देवी कहते हैं, तो उनका भी शरीर हिलता रहता है, क्योंकि दूसरी आत्मा आई और ब्रेन पहली आत्मा का है तो वो उसको एकोमोडेट नहीं कर पाता, उसकी शक्ति को सहन नहीं कर पाता। भगवान किसी के तन में आए, ऑल माइटी पावर, सुप्रीम पावर, तो बहुत पावरफुल ब्रेन, बहुत डिवाइन ब्रेन, बहुत प्योरिटी से सजा हुआ ब्रेन चाहिए जिसमें भगवान बैठे। तो उसी महापुरुष की कहानी आपको सुना देते हैं। कोई भी महान पुरुष गाया जाता है, उसकी महिमा होती है उसकी त्याग से, तपस्या से, उसकी साधनाओं से, उसकी धारणाओं से, उसके कर्तव्यों से। ये सब चीजें आप सुनेंगे यहाँ और देखेंगे। आप सबको यहाँ अच्छा लग रहा है? मैं आपको एक का अनुभव सुनाऊं। अभी पीछे 2 प्रोग्राम पहले यहाँ सिक्योरिटी का प्रोग्राम था, सिक्योरिटी में मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर और जनरल से लेकर कर्नल बहुत थे, और पुलिस के बहुत अधिकारी एसपी डीआईजी कमिश्नर थे। तो एक भोपाल से व्यक्ति आया था, मुझे मिला, बड़ा आदमी था, एडिशनल कमिश्नर। मैंने पूछा यहाँ के कैसा लगा, उसने बहुत सुंदर बात कही। मैं तो जानता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ ये अनुभव बहुतों के सुनने को मिलते हैं कि यहाँ आते ही मन शून्य हो गया। शायद आप इस भाषा को समझते होंगे, समझते हैं? मन के सभी थॉट विचार शांत हो गए। ये वो स्थिति है जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वियों को पूरा जीवन लगा देना पड़ा। इसको निर्संकल्प समाधि कहते हैं। उसको आते ही हो गई पहले ही दिन, अभी को सुना नहीं। मैंने कहा तो आपने विचार किया ये यहां क्यों हो गया? यहां जो सुंदर माहौल है वो किसी ने तो क्रिएट किया होगा या आप ही हो गया? ये स्थान ऐसा था जहां भेड़िए रहते थे, जहाँ चीते घूमते थे, जहाँ भालू होते थे। यहाँ आने का कोई साहस भी नहीं कर पाता था। हम लोग जब पहली बार इस जगह को देखने आए तो सोचा था दोबारा नहीं आएंगे, इतने तो थक गए थे, रास्ते नहीं थे, पैदल आए थे 2 किलोमीटर तो झाड़ियों से निकलते हुए। अब ये स्थान विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, शायद आपको इस बात का पता नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये हमारा है ये कमेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ 140 देशों के लोग आते हैं। सीजन होता है उनके, 6 मास हम रखते हैं, अक्टूबर से शुरू होगा और मार्च तक चलेगा। वो सुनाते हैं कि हमने दुनिया में सुंदर सुंदर स्थान देखे, पर स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ अति सुंदर स्थान संसार में कहीं नहीं है। बाहरी ब्यूटी बहुत होती है, मंदिरों की ब्यूटी होती है, लेकिन ऐसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस जहाँ कर मनुष्य को ज्ञान मिले, जहाँ उसका चित्त शांत हो जाए, जहाँ उसकी टेंशन खत्म हो जाए, जहाँ से वो जीवन जीना सीख ले, ये वो स्थान है। तो ये क्रिएट किया था ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ज्ञान देकर, भले वो तब यहाँ नहीं थे जब ये बना, इसको बने हुए 28 साल हुए हैं। बाबा अब पीछे चलते हैं, 1935 बाबा जिनका नाम दादा लेखराज था, जो अपना बिजनेस करते थे हीरो का, कलकत्ते में विशेष रूप से और मुंबई में, और बहुत अच्छे फेमस व्यापारी थे। उनका संबंध बड़े बड़े घरानों से और विशेषकर नेपाल और उदयपुर के राजाओं से भी था। वो महलों में खुलेआम चले जाते थे, इतना सम्मान था उनका। दरबार में बैठते थे, जब राजाओं का दरबार लगता था राजा लोग बहुत सम्मान देते थे। लेकिन 1935 भक्ति बहुत अच्छी थी उनकी, नारायण की भक्ति, विशेष रूप से श्री कृष्ण नारायण इनकी भक्ति बहुत ज़्यादा करते थे। 12 गुरु भी उन्होंने अपनाए थे जीवन में, क्योंकि सत्य की खोज थी। एक गुरु के पास गए, कुछ मिला लेकिन संतुष्टि नहीं हुई, दूसरे के पास गए, कुछ मिला लेकिन और आगे बढ़े, 12 के पास गए। एक दिन जब वो भक्ति बहुत अच्छी करते थे, 35 के आसपास की ये कहानी है, उनके मन में वैराग की फीलिंग होती जा रही थी। एक दिन उन्होंने गुरु को अपने घर में बुलाया हुआ था, घर बड़ा था, आंगन में गुरु का सत्संग चल रहा था, और यहाँ से बदली उनकी जीवन रेखा, भाग्य की रेखा। गुरु का भाषण चल रहा था और बीच में वो उठे, उनको भी समझ में नहीं आया कहाँ जा रहे हैं, और वो कमरे में चले गए, घर था। उनके पुत्र वधु ने नोट किया कि दादा गुरु को छोड़ के उठ गए, ये पॉसिबल नहीं होता था, बहुत सम्मान करते थे वो गुरुओं का। तो 5 मिनट के बाद वो भी पीछे गई, तो जो देखा वो मैं आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने देखा कि वो कमरा लाल प्रकाश से भरा हुआ है, बाबा की आंखें लाल हैं, और जैसे उसने प्रवेश किया उसको आवाज आई बाबा के मुख से, निजानंद स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, प्रकाश स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, ऐसी कुछ आवाज आ रही थी। शिवो अहम, मैं शिव हूं। वो तो दादा थे मनुष्य, वो कैसे बोल सकते हैं, ये उन्होंने सुना अपने कानों से। राधा नाम था उनका राधिका, छोटी आयु थी और उसको समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अब किसको बताऊं। वो वहां खड़ी देखती रह गई, अवाक हो गई। कुछ देर के बाद ये सीन लोप हो गया और उसने कहा, दादा कहां हो आप? दादा ने सिर हिलाया, अच्छा मैं यहां हूं, गुरु का सत्संग चल रहा था, मैं यहां कैसे आ गया? ये था वो समय जब निराकार शिव ने उनके तन में प्रथम बार प्रवेश किया। फिर और बहुत सारी घटनाएं हुई, फिर वो अपने गुरु के पास गए, क्षमा मांगी और कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से आज मुझे ऐसा ऐसा दर्शन हुआ है। लेकिन गुरु ने कहा, भाई मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। गुरु जेंटिल था, दादा समझ गए कि गुरु की कृपा नहीं, ये तो किसी और की कृपा हो गई है। और उसके बाद दादा को भक्त अपने व्यापार से वैराग्य हुआ, भक्ति में और तल्लीन हो गए। फिर दूसरी घटना घटी, मुंबई में आए वो, अब उनका मन वैराग्य से भर गया था। उन्होंने इसके बाद साक्षात्कार किया महाविनाश का, के ऊपर से अग्नि बरस रही है, नीचे आग लगती जा रही है, संसार नष्ट हो रहा है, बहुत तेज पड़ले जैसी हो गई है, सब कुछ नष्ट हो गया है। घबरा गए और कहा, हे प्रभु मैं नहीं देख सकता, मुझे न दिखाओ ये। फिर उन्हें तुरंत वो सीन बदला और दैवी दुनिया आने वाले स्वर्णिम युग का साक्षात्कार करा दिया और कहा, ऐसी दुनिया आएगी तुम्हें लानी है। उन्होंने कहा, मैं एक मनुष्य कैसे दुनिया को लाऊंगा? तब उनको आभास हुआ कि परमात्मा मेरे माध्यम से ये महान कार्य करना चाहते हैं। और उन्होंने, अब वैराग्य अपनी चरम सीमा पर था, अपने परिवार से बात की और अपना कारोबार समेट लिया। वैराग्य इतना था कि भागीदार भी था उनका, उसको कहा, भाई मेरा हिसाब कर दो, मुझे अब ये पत्थरों का धंधा नहीं करना है, उन्हें पत्थर लगने लगे हीरे, मुझे कुछ और काम करना है, मुझे भगवान के काम आना है, उसने मुझे आवाज दी है, तुम अब मेरा कार्य करो। अब भागीदार ने बहुत रिक्वेस्ट की, क्योंकि दादा के कारण ही तो व्यापार चलता था। दादा ने कहा, नहीं ये मेरा निर्णय है, तुम्हें जो चाहे ले लो और जो चाहे मुझे दे दो। एक तो होता है बैठ के सीए को बैठाते हैं, अकाउंटेंट को बैठाते हैं, हिसाब किताब करते हैं, बाबा ने ये सब नहीं, जो चाहिए ले जाओ और जो मुझे देना है दे दो। उसने हिस्सा कर दिया और बाबा ने फिर आ गए, बाबा सिंध हैदराबाद में, जहाँ उनका एक घर था, कराची में दूसरा घर था, वहां आकर ओम मंडली की स्थापना की, जिसमें बाबा ओम की ध्वनि लगाते थे और अनेक लोग जो उनके पास आते थे वो ध्यान अवस्था में पहुंच जाते थे। किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है, किसी को देवियों का हो रहा है, किसी को राम का हो रहा है, किसी को शिव का हो रहा है, साक्षात्कार होने लगे। लोग बाबा को कहते थे, बाबा आप जादू सीख के आए हो क्या कलकत्ते से? लोग सोचते ना जादू है। बाबा ने उनको उत्तर दिया, जादू से कोई भगवान के दर्शन होते हैं क्या? जादू तो हाथ का खेल होता है, ये मैं नहीं परमात्मा करा रहा है। ज्ञान देना शुरू कर दिया, बहुत लोग आने लगे और 380 लोग आ गए, कन्याएं माताएं छोटे बच्चे बड़े, उनमें से 8-10 बड़े व्यापारी भी थे जो सिंध के थे, उन्होंने भी अपना सर्वस्व जीवन न्योछावर कर दिया, बाबा ने भी अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, ट्रस्ट बना दिया और स्थापना कर दी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, जिसका नाम अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिसमें आप आए हैं पांच बहनों को का ट्रस्ट बनाकर उनके हाथ में सारी संपदा सौंप दी और आपको ख्याल रहे उसके बाद बाबा ने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया, पीछे तो पैसा देखा भी नहीं, उन दिनों एक पैसा भी होता था, हंसी की बात सुना देता हूँ, पैसा तांबे का होता था, बीच में कटा हुआ होता था। बहने गई बाबा के पास उसे लेके मजाक करने के, बाबा देखो ये क्या है, बाबा ने कहा देखा इधर उधर वासर होगा, वासर लगाते हैं ना पानी की ट्यूब जहाँ करते हैं टेप में, तो सब हंसने लगे कि बाबा ये पैसा है एक। तो बाबा ने कहा देखो भारत सोने की दुनिया था, अब कितना गरीब बन गया कि तांबे का पैसा बनाया वो भी बीच से काट दिया। ये हंसी की बात मैंने सुनाई। तो बाबा बिल्कुल निर्मोही हो गए, ये मैंने बहुत थोड़ी में सुनाया क्योंकि सतीश भाई आपको गीत में बहुत कुछ सुना चुके हैं। 14 साल ये लोग वहां रहे हैदराबाद से, फिर ये संगठन कराची में आ गया, थोड़ा विरोध होने लगा क्योंकि नया ज्ञान था, प्योरिटी की बात थी, ब्रह्मचर्य पालन का आदेश था भगवान का, भगवान ने कह दिया था काम महाशत्रु है, इसको जीतो तुम स्वर्ग की स्थापना करोगे, तुम्हें सतयुग में चलना है, पवित्र बनना है, मैं तुम्हें पावन बनाने आ गया हूं। लोग दादा के पास आते थे विरोध भाव से कि बाबा आप ये पवित्रता की बात क्या कर रहे हो, संसार कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा। बाबा कहता मैं थोड़ा ही कह रहा हूं, जो कह रहा है उससे पूछ लो, शिव बाबा से पूछो, वो आता है मेरे तन में, मैं नहीं बोल रहा हूं। विरोध के बाद इसलिए जो आपने गीत में सुना था ये कारोबार रुका नहीं, क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य था। 14 साल ये लोग कराची में रहे। बाबा ने 380 को बहुत ज्यादा राज्यों की आत्मा होने की, परमात्मा से जुड़ने की, भगवान से बातें करने की साधनाएं कराई। बहुत सारे लोग तैयार हो गए उसमें, परिपक्व हो गए। और फिर ये कारवां 1950 दिवाली पर भारत में आया, बाबा ने ढूंढवाया था, शिव बाबा का आदेश था तुम्हें पहाड़ियों पर जाकर तपस्या करनी है, भारत में ढूंढो कहाँ जाओ, बताया नहीं कहाँ जाओ, शिव बाबा डायरेक्ट ये सब नहीं बताते थे, अब ये तुम्हारा काम है ढूंढो। 3-4 का ग्रुप आया, आबू उन्होंने ढूंढा, राजाओं की कोठी थी एक किराए पर ले ली और ये कार्य यहाँ आ गया। पांडव भवन आप देखेंगे वो भी राजा का मकान था, वो ले लिया था। उसके बाद 50 के बाद 2-3 साल यहाँ रहने के बाद बाबा ने सबको आदेश दिया जो तैयार हो गए थे कि जाओ भारत के भिन्न भिन्न शहरों में और ये परमात्म संदेश जहाँ तहाँ फैलाओ कि भगवान आया है, ये कलयुग अब समाप्त होगा, सतयुगी दुनिया आने वाली है और तुम्हें उसके लिए पवित्र बनना है, योगी बनना है, ज्ञान योग से अपने को पावन बनाना है। बहुत सारी बहनें निकल गई, गई और भारत के भिन्न भिन्न शहरों में जाकर सेवा केंद्र खोले और आप जानते हैं अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पता कितने केंद्र हैं, 140 देशों में। बड़े केंद्र तो बहुत हैं लेकिन छोटे भी अगर मिलाए जाएं, गांव गांव में खोला हुआ है, 8,000 से ज्यादा हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी और आश्चर्य होगा और चिंतन होगा, चिंतन करना इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस समय 50,000 से ज्यादा कन्याएं अपने जीवन को समर्पित कर चुकी हैं। तो शिव बाबा के पास 50,000 से 60,000 के बीच में कह रहा हूं, कुछ लोग अभी लाइन में हैं, उनमें माताएं बहुत हैं, भाई भी बहुत हैं। इतना बड़ी एक शांति सेना, ये शांति सेना है, भगवान को मिली है, ये शिव शक्तियां हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली और संपूर्ण जीवन संसारिकता को छोड़कर, संसार के आकर्षणों से मुख मोड़कर, श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान के कार्य को पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प किया। अभी अभी शांतिवन में हमारे यहाँ 450 कन्याओं का समर्पण समारोह हुआ, जिसको आप अपनी भाषा में दीक्षा कहते हैं। दीक्षा लिए उन्होंने, उनके माँ बाप और परिवार भी आए थे, 10,000 का ग्रुप हो गया था, उनके सब संबंधी आए थे। तो ऐसी ये शिव शक्ति सेना है जो जन जन को संदेश दे रहे हैं, पवित्र बनाने का संदेश, ब्रह्मचर्य पालन करने का संदेश। मैं खोल के बोल रहा हूं, आप भी सोचेंगे, लोग भी सोचते हैं, कलयुग के अंत में और ब्रह्मचर्य जहां गंदगी के अलावा कुछ नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव है, देख लो जाकर आकर। और ये बहने कोई ऐसी नहीं कि ऐसी वैसी हो, हाईली एजुकेटेड है इनमें से बहुत बहने, कम से कम 80% बहने हाईली एजुकेटेड। मैं एक पूना के सेंटर पे गया, मुझे कहा भाई जी एक घंटे के लिए आ जाओ, सेंटर का फीता काट जाओ, नया सेंटर बना था। मैं गया था पूना, गए हम, चार बहनें थी, यंग थी। मैंने कहा अरे बहनों अपना परिचय तो कराओ, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आ गई, कैसे जीवन समर्पित कर दिया, क्यों कर दिया, मैं ये प्रश्न पूछा करता हूँ, क्यों जीवन समर्पित कर दिया आप लोगों ने, क्यों संसार को छोड़ा? एक बोली, मेरा ये नाम है, यहाँ की रहने वाली हूँ, मैंने M.Tech किया है, सोचा नौकरी करके क्या करूंगी, भगवान की सेवा में जीवन सफल हो जाए, मैं आ गई। दूसरी, मैंने MBBS किया है, सोचा वो बीमारों की सेवा करने से अच्छा है, मनुष्यों को पावन बनाने की सेवा करूं, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करूं, मैंने भी जीवन समर्पित किया। तीसरी ने MBA किया था, और चौथी MCOM थी, कॉमर्स से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आप चारों हाईली एजुकेटेड मिलके चलोगी? कहा बिल्कुल, हम तो गुड फ्रेंड हैं एक दूसरे के। ऐसी अनेक बहनें मेरे पास तो रोज आती हैं मिलने, मैं उनकी क्वालिफिकेशन पूछता हूँ। किसी ने इंजीनियरिंग करके अपने को समर्पित कर दिया, किसी ने CA करके भी अपने को समर्पित कर दिया, CS करके अपने को समर्पित कर दिया। मैं उनसे पूछता हूँ तुमने CA किया, कितनी मेहनत करके CA की डिग्री मिलती है? तो सेवा करने के लिए CA किया था। के बस वो तो किया था कि क्वालिफिकेशन मिल जाए, बाकी तो हमें भगवान की सेवा करनी है बाबा। अब सोच लो इन आत्माओं को कौन खींच रहा है, वो हमारे कहने से जीवन समर्पित कर सकती है क्या? कभी नहीं। वो भगवान पे ही समर्पित हो रही हैं, वही उनको प्रेरणा दे रहा है, संकल्प दे रहा है, वही उनकी पालना कर रहा। बाबा ने पहले 14 साल बहुत तपस्या की, जब आबू आ गए तो बहुत सारी बहनें सेवाओं में चली गई थी, यहाँ 20-25 ही रह गए थे। और बाबा ने गहन तपस्या की थी। हमारी तपस्याएं अभी आप में से बहुतों को पता नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़कर सोल कॉन्शियस हो जाना, परमात्मा से निरंतर जुड़ जाना, उसकी शक्तियां स्वयं में भर लेना, अपनी प्योरिटी को परफेक्ट कर देना ताकि स्वप्नों तक भी कोई इम्प्योर थॉट ना आए, अपने गुणों से जीवन को सजा लेना, ये सब लक्ष्य होता है। और बाबा ने इसको पूर्ण किया था बाबा के बारे में कहूं, बाबा के जीवन को मैंने देखा है, बाबा को, बाबा का जीवन संपूर्ण निरहंकारिता से भरा हुआ था, नो ईगो। त्याग बहुत बड़ा किया था, त्याग की फीलिंग नहीं कि मैंने कोई त्याग कर दिया। बाबा तो कहते थे पत्थर छोड़ के हीरे ले लिए, असली असली हीरे तो ज्ञान के हीरे हैं, ज्ञान रतन हैं, वो तो पत्थर थे। कोई फीलिंग नहीं कि उन दिनों की मैंने लाखों की संपदा त्याग दी थी, उन दिनों 36 में। बहुत निरहंकारी, बहुत निर्माण चित, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो दूसरों की सेवा में सब कुछ लगाने वाले। मैं बाबा को की एक बात आपको सुना दूं। बाबा ने संगठन को कहा हुआ था, किसी बच्चे को कभी भी मेरे से मिलना हो ये नहीं सोचना बाबा सोया हुआ है, बच्चे तुरंत आ जाना। बाबा तो जागती ज्योत है, और लोग देखते थे कि बाबा सोया हुआ है, और जैसे ही दरवाजे से झांका, कोई सोचता तो नहीं था ना बाबा को जगाएं, लेकिन देखा ही बाबा सोए हुए और बाबा जग गए, आओ बच्चे क्या काम है। निद्रा जीत, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत, जिन्होंने अपनी बुद्धि को डिवाइन बना लिया था, ऐसा उनका स्वरूप था। भी है ना सोचना मैं उनकी बिना मतलब की महिमा कर रहा हूँ, सभी अपनों की महिमा किया करते हैं, ये संपूर्ण सत्य है। इसलिए वो फरिश्ते बन गए, मधुर भाषी। कभी किसी ने उनको उनमें क्रोध नहीं देखा होगा, सभी के लिए शुभ भावनाओं से भरा हुआ जीवन। बात 1968 की एक कहानी सुना देता हूँ। कलकत्ते में हमारी कोई प्रदर्शनी लगी थी, उसमें शंकराचार्य को ओपनिंग के लिए बुलाया गया था, कोई डिस्टरबेंस हो गया। वहाँ का अखबार विश्वामित्र, उसने एक लंबा लेख बाबा के विरुद्ध छाप दिया था। बाबा के पास मैसेज आया, दिल्ली के बहुत सारे और कोलकाता के भाई बहने थे, उन्होंने कहा बाबा इसने बिना कुछ सुने बिना सोचे समझे लेख डाल दिया है, इस पर मानहानि का केस किया जा सकता है, इसका अखबार ही बंद हो जाएगा। हम जानते हैं वकील, वो अच्छे वकील ज्ञान में थे। बाबा ने कहा नहीं, वो भी मेरे बच्चे हैं, बाप कभी अपने बच्चों पर केस किया करता है क्या। और बहुत सुंदर महावाक्य सबको दे दिए थे, बच्चे सदा याद रखना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। फेमस हुई ये महावाक्य हमारे यज्ञ में बहुत, तो निंदक को भी गले से लगाने वाले, सतीश भाई ने अपने गीतों में भी लिखा है ये, निंदक को गले से लगाने वाले, निंदक को भी प्यार दे देकर सॉफ्ट कर देने वाले, निंदक को फ्रेंड बना लेने वाले, ये बाबा थे। और यही बातें उन्होंने हमें सिखाई हैं, ये सब चीजें प्रैक्टिकल थी, बहुतों ने देखा। हम तो लास्ट में आए थे 68 में, लेकिन जो बाबा के साथ 10-15 साल रहे उन्होंने ये सब देखा कि ये आत्मा कितने महान विचारों की धनी है। इस आत्मा का चित सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाओं से कितना भरा हुआ है। बाबा के पास मुस्लिम्स भी उसी प्यार और भावना से आते थे, बाबा के पास क्रिश्चियंस भी सिख भी बहुत बड़े सम्मान से आते थे, कोई भेदभाव जाति पाति का, गरीब अमीर का बाबा के पास नहीं था। बाबा तो कहा करते थे मैं गरीबों से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, क्यों, क्योंकि गरीबों का मन भगवान के प्रेम से ज्यादा भरा होता है। साहूकार लोग तो धंधे धोरी में व्यस्त रहते हैं। तो बाबा की महानताएं, तपस्या की बहुत ज्यादा। अब मैं उनकी आखिरी सीन सुना रहा हूं आपको। उन्होंने स्वेच्छा से अपना देह त्यागा था, कोई भारी बीमारी से नहीं, बाबा को कोई भयानक बीमारी नहीं हुई, कभी एक यूरिन का छोटा सा ऑपरेशन हुआ था बहुत पहले। 69 18 जनवरी, बाबा की तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, 93 एज हो गई थी, थोड़ी सी ढीली, लेकिन बाबा ने सारा दिन 45 तो लेटर लिखे, जब आए हुए थे चारों ओर से उनका उत्तर दिया, कम से कम 3 घंटे लगाए होंगे उसमें, घूमे फिरे, रात्रि को क्लास कराई। ये घटना है रात के 8:45 की, और क्लास के बाद बाबा अपने कमरे में आया। अब देखेंगे बाबा का कमरा गहन तपस्या के वाइब्रेशन से भरा हुआ, जहां जाते ही चित्त एकाग्र हो जाता है। बाबा वहां आ गए, बाबा की तबीयत ढीली समझकर 2-3 महीने बाबा के साथ आई। दादी प्रकाश मणि उसमें मुख्य थी, जो बाबा के बाद चीफ बनी। बाबा अपनी बेड पर बैठ गए, दादी नीचे बैठी थी, वो पड़ा था मूड़ा। बाबा ने दादी का बच्ची यहाँ बैठो, चारपाई पर ही बाबा किनारे पर बैठे थे, सिराने तकिए से ऐसे लगा हुआ था। बाबा ने दादी के हाथ में अपना हाथ दिया और आधे मिनट में ही देह से मुक्त। और दादी को लगा, प्रकाशमणि को, कि बाबा ने अपनी शक्तियां मुझे ट्रांसफर कर दी हैं। ये आखिरी सीन था, बहुत अच्छे, बाबा का शरीर गिरा भी नहीं, वैसे का वैसा स्थिर रहा। शरीर का कोई रूप रंग बदल जाए ऐसा भी नहीं हुआ, 3 दिन रखा रहा बॉडी। सभी आए, संस्कार हुआ 3रे दिन। तो ऐसी महान शक्ति जिसने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज भी, अब वो शरीर छोड़कर कहाँ गए होंगे ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, हमें पता है उसका। वो शरीर छोड़कर उन्होंने पुनर्जन्म नहीं लिया, क्योंकि ऐसे महान तपस्वी पुनर्जन्म नहीं लेते, वो फरिश्ता बनकर चले गए सूक्ष्म लोक। आपने आज 3 लोकों की कहानी सुन ली होगी, स्थूल सूक्ष्म मूल वतन। वो चले गए सूक्ष्म लोक और वहां से शिव बाबा के साथ स्थापना का अपना महान ये कार्य कर रहे हैं, दिव्य कार्य कर रहे हैं। आते रहे हमारे बीच में 50 साल पूरे, हमने उनकी फिर महावाक्य सुने, उनके वाइब्रेशंस देखे। शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों आते थे, बहुत सुंदर पालना की। तो ये जो स्थान है ये प्रभु मिलन का स्थान है। यहाँ से आप केवल ईश्वरीय ज्ञान ही नहीं लेंगे, केवल राजयोग ही नहीं सीखेंगे, बड़ी बात कही जा रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ आपको प्रभु मिलन का परम सुख प्राप्त होगा। थोड़ा और ज्ञान ले लें, जिसको ढूंढते आए हम सभी युगों से, उसने आकर ब्रह्मा के तन के द्वारा युग बदलने का ये महान कार्य किया, और उसी महान कार्य में हम सभी बहुत सारे भाई बहने, मैंने कहा 50,000 से ज़्यादा भाई बहने तत्पर हैं, जिन्होंने अपना जीवन डेडिकेट कर दिया, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, और इस महान कार्य को, जिसे हम महान यज्ञ कहते हैं, रुद्र यज्ञ कहते हैं, इसको संपन्न करने का दृढ़ संकल्प किया। और अब आप देखेंगे इस महान यज्ञ के द्वारा, ध्यान से सुन लेंगे, अब देखेंगे आप बहुत जल्दी 5 साल के अंदर ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा संसार में, इस वसुंधरा पर स्पिरिचुअल लहर फैला दी जाएगी। इस संसार के अनेक लोग राजयोगी बनकर, पवित्र बनकर इस संसार को बदलने का महान कार्य करेंगे। और जो हम संदेश देते आते थे, अब तो वो सभी लोग दे रहे हैं, ये युग बदल जाएगा, कलयुग की समाप्ति हो जाएगी, और सभी आत्माएं अपना धाम छोड़कर घर वापस जाएंगी। आप सभी लोग यहाँ आए हैं, मैं एक सुंदर बात जो बाबा ने हम सबको सिखाई है आपको बता देता हूँ, आपको बहुत फायदा होगा उस बात से। हम सभी प्रभु पालना में पले हैं, ये जो ईश्वरीय ज्ञान यहाँ आपको दिया जा रहा है, ये शास्त्रों का नहीं, ये किसी मनुष्य की रिसर्च का नहीं, ये स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। हमने उसको इस धरा पर आते हुए हजारों बार देखा है, कल्पना नहीं देखा है, दिव्य नेत्रों से उसके मुख से सत्य ज्ञान सुना है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसे अगम निगम का भेद कहते हैं, वो सब उसने स्वयं खोला, वो हमने कानों से सुना। आप सब उसको सुनकर जिसे हम अमृत पान करना कहते हैं तृप्त हो सकते हैं। वो बात अब मैं बता देता हूँ आपको, फिर आपका अगला प्रोग्राम चलेगा। सवेरे जब भी आप उठें, कल से यूज कर लेना, जब मनुष्य रोज सवेरे आंखें खोलता है तो 10 मिनट उसके लिए जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। रोज जान लें आप इस रहस्य को, रोज 10 मिनट भाग्य निर्माण का समय होता है, फ्यूचर को डिटरमाइन करने का समय होता है, भविष्य को निश्चित करने का समय होता है। ये ना सोचना आप भाग्य बना बनाया है, भविष्य तो निश्चित है, हम क्या करेंगे। आप अपने कैरियर में जिस भी फील्ड में आप हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है, आप पोएट हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहो, सवेरे उठकर रोज 10 मिनट उसी तरह के विचारों से, उसी तरह की विजन से अपने को चार्ज कर लेना। 10 मिनट में भी पहले 5 मिनट और इम्पोर्टेंट हैं। पहले 5 मिनट में भी 3 मिनट, उसमें भी पहला मिनट, उसमें भी पहला विचार जो आपके जीवन की धारा को बदल देगा, आपको क्या से क्या बना देगा। आप एक्टर हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप एक्टर हैं और आप सवेरे उठते ही शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना और कहना, बाबा आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ है, मैं भारत का बेस्ट एक्टर बनूंगा, पूरे विश्वास के साथ। मुझे बनना है नहीं, क्या कहा मैंने, बनूंगा। आप सिंगर हैं, कंपटीशन है, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, आपको कम अवसर मिलता है। उठते ही पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग अवश्य करना और संकल्प करना, शिव बाबा का, भगवान का ब्लेसिंग का हाथ मेरे सिर पर है, मैं कुछ ही समय में, टाइम भी दे देना 1 साल में, बहुत अच्छा फेमस सिंगर बन जाऊंगा, बन जाऊंगी। और देख, रोज करना, लेकिन ये थॉट 21 डे जरूर कर लेना। जितना विश्वास के साथ, भावनाओं के साथ आप करेंगे, ये संकल्पों की बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि सवेरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, सबकॉन्शियस माइंड विजन को एक्सेप्ट करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड विजन, आप एक गायक हैं, विजन बना लेना, चित्र बना लेना, मैं गीत गा रही हूं, सामने 5,000 लोग बैठे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है, 1 साल के अंदर, टाइम भी देना है। जो विजन और टाइम आप देके सवेरे ही तैयार करेंगे अपने को, लेकिन 21 दिन कम से कम 11 दिन वो होगा, वो निश्चित है। ऐसे मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा भाग बहुत सुंदर है, मेरे भाग में सब कुछ सुंदर लिखा है, मेरे गुड डे चल रहे हैं, ये नहीं बुरा दिन आ गए हैं, भूल से भी ना सोच लेना। उठते ही आपने उठते ही सोच लिया, क्या भगवान मेरा तो भाग्य खराब है, कितने बुरे दिन आ गए, तो समझ लो आपने बुरे दिनों का आह्वान कर लिया। जो सवेरे उठते ही पहले 3 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट तक आप करेंगे, समझ लो वही होगा, यू विल बिकम द क्रिएटर ऑफ योर फॉर्च्यून। समझ गए ना, भाग्य के निर्माता बन जाएंगे। जो भी विचार आप चाहें, परिवार के लिए, अपने लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, उठते ही बहने हंसी की बात सुना दूं, पति से झगड़ा रहता है, उठते ही चेहरा देखा, कैसा पति मिला, पता नहीं कब जान बचेगी, तो और खराब हो जाएगा ना। उठते ही संकल्प करना कि बहुत अच्छी आत्मा है, मेरा गुड फ्रेंड है, हम दोनों के बीच बहुत प्यार है। देखना चमत्कार ये संकल्पों का जादू। थैंक यू वेरी मच, आप सब आए, मोस्ट वेलकम। लास्ट में कर रहा हूँ, वैसे तो आपका हो चुका है मेरी ओर से भी, और यहाँ आते रहिए और अपने भाग्य को चमकाते रहिए। ओम शांति। नहीं मुझे तो नहीं है ना। चलो अब जो संकल्प मैंने बताए, अब सोच लो ये हमारा सवेरे का समय है, हम उठे हैं, और वही संकल्प अपने मन में कर लो शिव बाबा को याद करते हुए, उसकी ब्लेसिंग्स लेते हुए।
करती रहती बस दीदार तुम्हारा।
શાંતિ.